ही फूल है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है।
अभी अक्टूबर 25 दिसंबर 1969, फरिश्ता अर्थात पहले दिन हमने देखा, फरिश्ता अर्थात ज्योतिर्मय काया वाला, कल देखा फरिश्ता अर्थात मरजीवा, उसमें तीन सूत्र देखे, पहला नवीनता, दूसरा रचनात्मकता, तीसरा परिवर्तन। मरजीवा जन्म अर्थात चार आयाम है उसके, पहला हम सभी जानते हैं जो छूट गया, जो बीता है उसको भूल जाना, मर जाना उससे, और तीन आयामों की चर्चा कल की थी। आज का तीसरा, फरिश्ता अर्थात सब बातों में हल्के, जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है, हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होता है वो कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे, संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, कर्म करने में भी हल्के, और चौथा संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन चारों बातों में हल्कापन है तो फरिश्तेपन की अवस्था है। अब देखना है कहाँ तक इन चार बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वो एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कार को परख सकेंगे और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह सब गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। फरिश्ता अर्थात हल्का, कितना हल्का? फरिश्ता अर्थात हल्का, किन बातों में हल्का? संकल्प में हल्के। किन बातों में हल्के? बोल में हल्के। किन बातों में हल्के? कर्म में हल्के। और किन बातों में हल्के? संबंध में हल्के। तो पुरुषार्थ है हल्के बनने का। भारी किसने बनाया है? अपने ही विचारों ने। भारी किसने बनाया है? व्यर्थ ने। भारी किसने बनाया है? विकारों ने। भारी किसने बनाया है? विकर्मों ने। भारी किसने बनाया? उदासी ने। भारी किसने बनाया है? मोह ने। भारी किसने बनाया है? अतीत की स्मृतियां, इच्छाओं ने भारी कर दिया है। महत्वाकांक्षाओं ने भारी कर दिया है। भारी किसने किया है? चिंताओं ने, व्यर्थ ने, भोजन ने। गुरुकुल की शिक्षाएं पूरी हुई और सभी विद्यार्थी अब अपने घर जाने लगे। सब ने गुरु को कुछ न कुछ दिया, पर एक विद्यार्थी ऐसा था जो बहुत दरिद्र था, गरीब था। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरु से कहा, अभी आपके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मैं भविष्य में कुछ न कुछ आपको दूंगा और आप उसे स्वीकार करेंगे, ऐसा वादा करो। गुरु आश्वासन देता है। वो विद्यार्थी, वो युवक वहां से चला जाता है, पर बहुत दुखी है कि मैं अपने गुरु को कुछ भी ना दे पाया। इतने सालों तक उनसे शिक्षा ग्रहण की, इतना ज्ञान सुना, इतनी अनुभव की बातें सुनी, धर्म की बातें सुनी, विवेक की बातें सुनी, पर मैं कुछ ना दे पाया। दुखी था। दुखी होकर किसी दूसरे शहर में जाता है, अपने एक मित्र के यहाँ रुकता है, अपने मित्र से अपनी दुख की बात बताता है और कहता है, मैं क्या करूँ। वो मित्र कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या देना चाहते हो? वो सोचता है, कहता है, 5 स्वर्ण अशर्फिया, बस इतना ही अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने गुरु को दे दूँ, ऋण चुक्त हो जाए। वो कहता है, इतनी सी बात, तुमने शायद सुना नहीं है तुम किस राज्य में आए हो। इस राज्य का जो राजा है रोज सुबह निकलता है बगीचे में सैर करने, और जो भी पहला याचक आ जाता है उसको जो चाहिए वो दे देता है। तुम सुबह सुबह उठ के चले जाना, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। रात भर करवटें बदलता है, सोचता है, क्या वास्तव में ऐसा होगा। सुबह उठ के जाता है, बगीचे के पास खड़ा रहता है, देखता है राजा तो आ रहा है। अपने मन की तैयारी कर लेता है, राजा आता है, वो नीचे झुक जाता है, कहता है, मुझे कुछ चाहिए, कुछ दीजिए। क्या ये सत्य है कि आप जो पहला याचक मिलता है उसे सब कुछ दे देते हो, जो चाहिए वो? राजा कहता है, हाँ, पर आज तक कोई याचक आया ही नहीं, तुम ही पहले हो, क्योंकि इस राज्य में सभी समृद्ध है, आज तक मांगने ही कोई नहीं आया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो सोचने लगता है, कुछ भी, कुछ भी। सोचा तो था 5 स्वर्ण अशर्फिया, पर जब कुछ भी की बात आई तो 500 क्यों नहीं? फिर सोचता है, 500 मांगू। फिर सोचता है, कुछ भी तो 5000 क्यों नहीं? फिर क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, जितना वो गणित जानता था। संख्या मन ही मन बढ़ती जाती है। फिर पश्चाताप करता है कि गणित में पहले से ही बचपन से कम रुचि थी। अगर आज पूर्ण गणित जानता तो शायद संख्या और बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती, और सोचते 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 वो यहां तक आ जाता है कुछ भी, पर कुछ भी मांगू फिर भी कुछ तो रह ही जाएगा, कितनी भी संख्या मांगू क्यों ना इस गणित और संख्या के चक्कर से बाहर निकल जाऊं और राजा से सब कुछ ही मांग लूं। राजा फिर कहता है बोलो मैं रुका हुआ हूं, मांगो। राजा देखता है इसकी अवस्था ठीक नहीं है, राजा कहता है मैं जरा एक चक्कर और लगा कर आता हूं, तब तक तुम सोच के रखो। वो कहता है ये ठीक है, थोड़ा टाइम मिल गया। तब तक वो सोच लेता है क्यों नहीं राजा से कहूं कि सब कुछ मुझे दे दो और तुम निकलते फिर बनो यहां से, तुम्हारा अब यहां कोई काम नहीं। फिर सोच लेता है ऐसा, राजा आता है हो गया। वो कहता है हाँ तुम और तुम्हारा जितना भी राज्य है जो कुछ है सब मेरा हुआ, जो कपड़े पहने हो बस इसी कपड़े में निकल जाओ, राज्य अब मेरा हुआ। वो सोचता है कि ऐसे मैं कहूंगा, कहते ही राजा डर जाएगा, पर राजा तो इतना आनंदित हो जाता है जमीन पर गिरता है घुटनों पर और कहता है हे प्रभु धन्यवाद, जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गया। कब से मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई आ जाए ऐसा कोई आ जाए, और आज वो आ गया। वो युवक एकदम घबरा जाता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने कुछ। राजा की अवस्था देखकर और राजा की खुशी देखकर उसे फिर से सोच चलता है ये क्या कर दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है क्या ये हो सकता है कि एक चक्कर आप फिर लगा के आओ, आई वॉन्ट टू रिवाइज। राजा कहता है नहीं नहीं ऐसा मौका मेरे हाथ में फिर नहीं आएगा, मुझे जाने दो, ये तुम सौंप लो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी की का तो मुझे इंतजार था इतने वर्षों से। वो कहता है नहीं प्लीज एक बार आप एक चक्कर लगा के आ जाओ। और जब राजा जब एक चक्कर लगा के आता है, युवक वहां है नहीं। वो उन पांच अशर्फियों को भी छोड़ आया, उसने उसकी दृष्टि ने देख लिया। क्या देख लिया? कुछ तो देख लिया, किसी छिपे हुए सत्य को देख लिया कि मैं क्या इच्छा लेकर आया था और मेरी इच्छाएं कहां तक बढ़ गई, और इस राजा की अवस्था देखो, खुशी है इसे सब कुछ छोड़ने में, और सोचते सोचते मेरी क्या हालत हो गई थी, कितना ये भारीपन मन में आ गया था, एक बोझ आ गया था, एक डर आ गया था, एक असमंजस, एक उलझन उत्पन्न हो गई थी जब तक यहां खड़ा था। इसलिए जब राजा वापस आता है तब वो युवक वहां नहीं है, वो चला गया। उसे जो सीखना था, जो पाठ पढ़ना था, उसने पढ़ लिया, और वो पाठ पूरे जीवन का पाठ था। भारी किसने कर दिया था और हल्का कैसे हो गया, कई दृष्टि से इस पर सोचा जा सकता है कि हम जहां अभी खड़े हैं जीवन में, हमें कौन सी चीजें भारी कर रही है, और क्या हम करें कि जिससे हल्का हो जाए। बाबा कह रहे फरिश्ता अर्थात हल्कापन, फरिश्ता अर्थात जिसके संकल्प, जिसके बोल, जिसके कर्म, जिसके संबंध लाइटनेस है, हल्कापन है जिसमें। और जब भारी होते हैं, भारीपन की क्या निशानी है? इस युवक के साथ क्या क्या हुआ? उलझन, इच्छाएं, कंफ्यूज्ड, और लालच, और बेचैनी, हलचल, डर। हम जब भारी होते हैं तो हमें क्या क्या होता है? भारीपन अर्थात मन की स्थिति, नींद आती है? नहीं आती है, अनिद्रा। और क्या होता है? चिड़चिड़ापन, बेचैनी। और क्या होता है? उदासी, उदासी, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, किसी एक बात ने इतना भारी कर रखा है मन को, इतना भारी। वो कोई भी बात हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और दूसरों के लिए शायद वो बात बहुत छोटी हो, पर हमारे लिए वो बात बहुत बड़ी है। तो फरिश्ता अर्थात हल्कापन, कैसे हल्के बने, इस हल्केपन के आज हम तीन सूत्र देखेंगे, इन तीन सूत्रों की चर्चा करेंगे। जैसे मर्जीवा के तीन सूत्र कल देखे पर किए क्या? कल सारे दिन भर किया कुछ नवीन जो कब नहीं किया था, कुछ रचनात्मक, एकदम रचनात्मक, कुछ परिवर्तन। सबसे पहला सूत्र, अनलोड द गन, माइंड इज अ लोडेड गन। कहा जाता है मन क्या है, एक लोडेड गन है। अनलोड द गन, खाली कर दो अपने हृदय को, अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी आत्मा को। क्या कर दो? खाली कर दो। ये विधि है हल्के होने की। जितना जो भरा है बातों से, दमित इच्छाओं से, वो हल्का कैसे हो सकता है? भरा है बहुत ज्यादा। मूल्यों में क्या आता है? क्या कर दो बाबा के सामने? सच सच सुना दो। जिसने जितना छिपा के रखा है उतना वो भारी। इसके लिए सुना दो, बता दो, उड़ेल दो, एम्प्टी कर दो अपने आप को। कहा जाता है अध्यात्म अर्थात, दो परिभाषाएं अध्यात्म की, एम्प्टींग वन सेल्फ, इफेजिंग वन सेल्फ। अपने आप को खाली कर दो उस परमात्मा के आगे, और इफेजिंग अपने आप को मिटा दो, उस मैं को मिटा दो। ये दो काम जब हो जाएंगे तो अध्यात्म में संपूर्णता आएगी। एम्प्टी, इफेज, अनलोड द गन। पहला सूत्र क्या करो? खाली कर दो। कैसे? कैसे? बाबा को सुना के, लिख के, और सब कुछ तेरे हवाले। और कैसे अपने आप को खाली कर दे जो इतना भरा है अंदर? नुकसान तो सोच लिया पर वो भरा इतना ज्यादा है। हाँ, किसी को माफ करके, किसी से माफी मांग के, ये जो गन लोडेड है इसको खाली कर दो। सच्ची दिल से बाप को सुना दो, जो कुछ भी किया वो, जो आज तक किसी को नहीं सुनाया वो उसको सुना दो। आज शाम बाबा मिलन, तो जब बाबा के सामने बैठेंगे उसे वो बात बता दो जो आज तक किसी को नहीं बताई, उसे वो बात बता दो जो कई समय से हमें भारी किए जा रही है, बोझ है एक। शायद कोई अपराध हुआ है, शायद कोई विकर्म हुआ है, शायद कोई गुप्त पाप अब चल रहा है, पहले किया था और अब भी चल रहा है। सुना के, लिख के, और कैसे खाली करेंगे अपने आप को? रो के, कैथारसिस। इसको कहते हैं साइकोलॉजी में कैथारसिस। जो दबाया हुआ है पहले उसको रो लो जितना रोना है। एक बार रोना चाहिए, पर बार बार नहीं रोते रहना एक ही चीज के लिए। एक बार अलाउड है। रो रो के सब कुछ सुना दो, बता दो जो हुआ, फिर धीरे धीरे, फिर अभी रोने की आवश्यकता नहीं। खाली एक बार हो गया फिर तो भरने का काम है, फिर वो दूसरा काम है। पर इसको खाली अगर रख दिया तो फिर आंसुओं से भर जाएगा, इसे कुछ और चीज़ों से भरना पड़ेगा, वो अलग पुरुषार्थ है। तो बाबा को सुना दो, बाबा को लिख के बता दो, समर्पण कर दो। और एक है स्थूल रीति से समर्पण करना विथ पोस्चर। भगत क्या करता है? साष्टांग दंडवत। वो पोस्चर का बहुत महत्व है, वो याद रहता है। वैसे बाबा के कमरे में नहीं करना, ये अपने घरों में करना या अपने कमरों में करना, क्योंकि स्थूल जो शरीर करेगा जैसे ऐसे जैसे किया जाता है नमस्कार, अपने आप विनम्रता का भाव आ जाता है। हम जैसे किसी को ऐसा करेंगे तो उसके प्रति दुर्भाव स्वतः समाप्त हो जाते। उसी तरह समर्पण कर देना अर्थात लेट जाओ और रो, आंसू बहाओ, बताओ उसको कि ये किया है। किसी को बता भी नहीं सकते, तुमको बता सकते हैं पर, क्योंकि वो अपने पास ही रखेगा टॉप सीक्रेट। दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं है। बर्नार्ड शॉ ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं एक बार सुबह सुबह हमारा जो रशिया चर्च था वहां गया, एकदम सुबह का समय था और चर्च में प्रवेश ही कर रहा था तो एकदम आवाजें सुनाई दी, अंदर से कोई रो रहा, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूं, मैं अत्याचारी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, तू विराट है, तू रहम दिल है, तेरी कृपा अनंत है। उसका दिल भराता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है इतनी सच्ची दिल से भगवान से प्रार्थना कर रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह अंधेरे में। ध्यान से सुनता है तो पता चलता है ये तो हमारा जो शहर है वहां का जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसकी आवाज है ये। प्रार्थना पूरी हो जाती है, वो व्यक्ति पीछे टर्न करता है, ये पकड़ा जाता है सुनते हुए। वो व्यक्ति कहता है तुमने कहीं मेरी बातें सुनी तो नहीं? वो कहते सुनी तो सही, कहते बस यही भूल जाना, ये मेरे और उसके बीच है, बाहर कुछ भी मत बोलना, क्योंकि बाहर जो मैं हूं दुनिया के सामने वही रहूंगा। ये हमारी बातें थी केवल। तो प्रार्थना, स्वीकार करना, अपने पापों को स्वीकार करना, इसको अंग्रेजी में कहते कन्फेशन। क्रिश्चियनिटी में क्या करते हैं? कन्फेशन करते। एक बॉक्स होता है, वहां पर तुमने जो कुछ किया है वो पादरी होता है, वो भी उधर जाली के उधर, ताकि उसको भी ना दिखे तुम कौन हो, और कन्फेस करते अपने सिंस, अपने पाप। इस कन्फेशन के बाद व्यक्ति जैसे एक नया जीवन की शुरुआत करता है। कॉन्ट्रिशन कहते हैं इसे, कॉन्ट्राइट स्पिरिट। ओ लॉर्ड आई एम थाई कॉन्ट्राइट स्पिरिट, मैंने बहुत पाप किए, जो कुछ किया है जैसा भी किया है, मैं बेहोशी में था, अज्ञान में था, मूर्छा में था, अब जागा हूं, क्षमा कर, कृपा कर, दया कर। उसी तरह क्या कहा, लेट जाओ और आंसू बहाओ और माफी मांगो, और उसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हो कि इसके बाद ये नहीं होगा। जितना इस सारी क्रिया को लंबा खींचा जाए और शरीर की मुद्राओं के साथ जोड़ा जाए, उतना वो गहरा मन पर असर होगा। दो व्यक्ति शादी करते, शादी हो गई, ये सब आयोजन करने की क्या आवश्यकता है? वो किस लिए किया जाता है सारा? ये घोड़े का क्या रोल है? शादी दो लोगों की हो रही है, ये बारात का क्या रोल है? ये बैंड बाजा, ताकि वो दूल्हे को भी लगता है कि मैं भी कुछ हूं और मेरी भी अभी शादी हो रही है। इट्स द सम्मोहन, एक सामाजिक सम्मोहन क्रिएट किया जा रहा है। किस लिए? ताकि उन दोनों के मन में ये बिठाया जाए बहुत गहराई से, वो भूले ना कि ये तुम दोनों अब एक दूसरे के पति पत्नी हो, अब इधर उधर बुद्धि नहीं जानी चाहिए तुम्हारी, बस तुम एक दूसरे को हो, दैट्स इट। तो पर ये इतना सारा आयोजन किस लिए? ये करना है पूरा, कितना महीनों से तैयारियां चालू हो जाती है शादी की तैयारियां। फैट मैरिजेस, तो वो सब किस लिए? सम्मोहन। और हमारी प्रार्थना, बाबा के कमरे में गई, चिट्ठी निकाली, डायरी खोली, बाबा ये गलती हुई, वो गलती हुई, डाल दी, निकलने के बाद भी पता नहीं क्या लिखा, इतना हमने कोई सम्मोहन ही नहीं क्रिएट किया। तो कैसे बुद्धि पर, अवचेतन मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर वो गहरा उतरेगा? दीक्षा दी जाती है, कितनी बड़ी प्रोसेस की जाती है, समर्पण समारोह होता है। अब उसके समारोह की वैसे कोई आवश्यकता नहीं, एक आत्मा है जो समर्पित हो रही है भगवान के यज्ञ में, काम पूरा हुआ, फिनिश। पर वो सब किस लिए आवश्यक है? ताकि ये सब किस लिए चल रहा है? ये चुन्नी और ये सब मैं क्यों पहन रहा हूं, पहन रही हूं? ताकि याद रहे, ये फोटो याद रहने के लिए। तो उसी तरह ये जो कन्फेशन है, ये जो प्रायश्चित है, ये जो पश्चाताप है, ये भी क्या हो? एक यादगार, याद रहे ताकि वो भूल वो गलती फिर ना हो, और जब ये हो जाए अनलोडिंग तब हल्कापन आएगा। तब तक हल्कापन नहीं, तब जब तक वो बात अंदर छिपी हुई है, वो पाप वो विकर्म एक दुख है, किसी की मृत्यु हो गई पर उसका दुख हमें भूला ही नहीं है, वो इतना प्रिय था कि भूला नहीं है, तो क्या करना है, सुना दो, समर्पण कर दो, बता दो, और सच्ची दिल से, सच, इसमें झूठ नहीं चलेगा। जितना सच्चाई से समर्पण होगा, जितने सच्चाई का पश्चाताप होगा, उतना आगे फिर वो भूल नहीं होगी, नहीं तो वही भूल होती रहेगी। भूल करो पश्चाताप करो, भूल करो पश्चाताप करो, पत्र लिखो, जीवन पर्यंत चालू है। तो सबसे पहला सूत्र, अनलोड द गन, दूसरा ड्रॉप द रोप, रस्सी को छोड़ दो। सबसे ज्यादा भारी करने वाली चीज है अतीत, होल्डिंग, पकड़ के है कोई चीज को, छोड़ ही नहीं रहे उसको, और जितना जोर से पकड़े हुए है उतनी वो चीज हमें भारी कर रही है। बात हो गई है, बात पुरानी हो गई है, उसको समाप्त हो गई है, अब उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, पर हमने क्या कर रखा है, पकड़ के रखा है, और ये पकड़ ही हमें भारी कर रही है। यहां आत्माओं के पार्ट बदल रहे हैं, ये हम भूल रहे हैं। हरेक अपनी व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ चुका है, हरेक अपने व्यक्तिगत जीवन में, स्कूल में कॉलेज में दोस्त थे, 20 साल के बाद मिलते हैं, वो उसके जीवन में आगे बढ़ चुका है, ये इसके जीवन में आगे बढ़ चुका है, अब शायद कोई तालमेल नहीं है उनके जीवन में, तब दोस्त थे शायद अब नहीं है। इस सत्य को भी मानना पड़ेगा, और हरेक की हरेक इच्छा पूर्ण ही हो ऐसा जरूरी भी तो नहीं है। एक व्यक्ति चाहता है इससे शादी करो, उससे नहीं होती किसी, उसकी दूसरे से हो जाती है, स्वीकार करो इसको भी फिर। हरेक को सब नहीं मिलेंगे जो तुमको चाहिए। अतीत को छोड़ो, जब तक अतीत को पकड़े हुए जोर से तब तक हल्कापन आ ही नहीं सकता। कैसे छोड़ेंगे, छोड़ो तो छूटे, कैसे छोड़ेंगे, बीती सो बीती, रात गई सो बात गई, कल भी सुनाया था, आज का दिन पूरा हुआ अर्थात मेरी मृत्यु हो गई है, आज जो नई सुबह है अर्थात मेरा आज नया जन्म हुआ है, मैं अभी अभी जन्म लिया है, मैं अभी अभी परमधाम से अभी तो उतर के आई हूं, ऐसा भी सोच सकते हैं, मैं आत्मा अभी परमधाम से पहला ही जन्म है ये, तो या तो ये, या तो रात में मर गया, अभी ये नया शरीर है, इस शरीर में हूं मैं, नई यात्रा शुरू। अतीत को कैसे भूलेंगे, अतीत का हम पर कोई प्रभाव ना हो, कोई भी प्रभाव ना हो, क्या किया जाए। इसमें भी एक चीज जो पहला बताया, कईयों को माफ कर दो और कईयों से माफी मांग लो, ये बहुत सुंदर विधि है, क्योंकि अतीत में इतनी बातें हुई है कि हम हमारे मन में किसी किसी के प्रति विरोध है, नकार है, नफरत है, घृणा है, कईयों को माफ करना पड़ेगा, किन के लिए, उनके लिए नहीं, स्वयं के लिए, कईयों से माफी मांगनी पड़ेगी, हमारी गलती नहीं है तो भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम माफी मांगे। बदले का भाव जब तक है तब तक भारीपन रहेगा, जिस दिन बदले का भाव निकल गया अचानक हल्कापन आ जाएगा, लाइटनेस, या तो अतीत को पकड़े हुए या तो भविष्य की चिंता है। एक सूफी संत को कारागार में डाल दिया गया और सुनाया गया कि कल सुबह तुम्हें फांसी की सजा, वो डरने लगता है कल सुबह मैं मर जाऊंगा। अचानक उसके गुरु उसके सामने आते हैं, गुरु कहते क्या हुआ, वो कहता है कल, कल ना, कल, आज थोड़ी, आराम करो, आराम से सो जाता है, कल देखेंगे, कल का। ड्रॉप द रोप, रस्सी को छोड़ दो। कौन सी रस्सी, या पुरानी यादें, दर्दनाक यादें, स्वजनों की मृत्यु, स्वयं को मिली हुई पीड़ा, स्वयं पर हुए अत्याचार, जो हम समझते हैं अत्याचार, वैसे ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं हो रहा है, पर हमारी दृष्टि बहुत ही छोटी है, ट्यूब्यूलर विजन है, इतना ही हम देख सकते हैं बस। इसलिए हमें अपमान को भूले नहीं है, दुर्योधन की अवस्था है अतीत को पकड़ना अर्थात, और लोडेड गन कुंती की अवस्था है, छिपाया हुआ है कुछ सबसे, इसलिए जीवन भर भारी बने। और दुर्योधन अपमान हुआ है उसका, भूलेगा नहीं अपमान, भारी किए हुए उसको। अतीत में जो कुछ हुआ सबसे पहले उसको स्वीकार करो, अतीत में जो कुछ हुआ उससे कुछ ना कुछ सीखो, अतीत में जो कुछ हुआ वो अब नहीं है, इसलिए वो मुझे अब डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, रुला नहीं सकता, वो हो गया है, वो वर्तमान में नहीं है, वो चला गया है, वो खत्म हो गया है, वो वापस नहीं आएगा, अभी कभी दफन कर दो उसको, दफना दो उसको। तीसरा सूत्र हल्केपन का, एंजॉय द शो। ये सब क्या हो रहा है, खेल चल रहा है, ये खेल है, ड्रामा है, नाटक है, प्ले है, गेम है, कार्टून शो है, मिकी माउस का खेल चल रहा है, एंजॉय करो इसको, जो कुछ हो रहा है। नॉन सीरियस एटीट्यूड, इसको कहते हैं नॉन सीरियस एटीट्यूड। जो लोग बहुत सीरियस होते, ज्यादा सोचते, एक एक चीज की खाल, बाल की खाल निकालते हैं, एक एक चीज एक्सट्रीमली सीरियस जो होते हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में, नॉन सीरियस हो जाना, सबको क्या समझना, ये खेल चल रहा है, खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, गेम हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है कोई चीज का, हल्का रहना, ये एक बहुत सुंदर कला है। क्योंकि एक ही दिनचर्या, हम देखो एक दिन की बातें देखो, एक दिन में कितनी बातें होती रहती है, 10 से 100 बातें होती है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अगर हम हर एक बात को पकड़ के रखें, हर एक बात के बारे में सोचते रहे, तो कितना भयंकर भारीपन हो जाएगा। योगी अर्थात हल्का, चीजें हो रही है, चीजें जा रही है, पकड़ना नहीं है किसी को भी। होल्डिंग नेचर और हाइडिंग नेचर हमारे दुख का कारण है, होल्डिंग नेचर अर्थात होल्ड करना, पकड़ के रखना, मैं भूलूंगा नहीं, तुमने मुझे ऐसा कहा था, कब कहा था, 20 साल पहले, क्या कहा था, तुम बुद्धू हो, तुमको कुछ समझता नहीं, ऐसा कहा था। उसके बाद पता नहीं कितनी बार उसने हमारी तारीफ कर दी, पर वो जो बुद्धू कहा था वो हम भूलेंगे नहीं। उसके बाद पता नहीं कितनी बार हमारा स्वागत किया, सत्कार किया, अपने घर पे बुलाया, मंच पर बिठाया, पर वो जो 20 साल पहले जो तुमने कहा था गेट आउट, वो हम भूलेंगे नहीं। वो जो तुमने धक्का दिया था वो हम भूलेंगे नहीं, चाहे बाद में हाथ पकड़ पकड़ के चलाया। होल्डिंग नेचर और हाइडिंग नेचर, ये दोनों दुख के कारण है, होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है और छिपा के रखा है। तो क्या समझना है, ये सारे को खेल चल रहा है यहाँ पर, और खेल में वैरायटी चाहिए। अब रावण का क्या दोष, उसे उसे पार्ट ही वैसा दिया गया है, वो क्या कर सकता है, उसका क्या दोष। और ये भी तो कहा है बाबा ने, ये ड्रामा कल्याणकारी है, तुम बीमार भी पड़ जाओ उसमें भी कल्याण है, तुम्हारा नहीं तो कम से कम किसी और का तो कल्याण है ही। बीमार की छोड़ो, तुम मर भी जाओ उसमें भी कल्याण है। एक व्यक्ति को आदत थी हर बात में ये कहता था, ये तो कुछ भी नहीं इससे भी बुरा हो सकता था, ये तो कुछ नहीं इससे भी बुरा हो सकता था, हर बात में ये कुछ भी नहीं है इससे भी बुरा हो सकता है। एक व्यक्ति, उसका मित्र आके कहते, मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में देखा कि मैं मर गया, अब बताओ इससे भी बुरा क्या हो सकता है। वो कहते, तुम वास्तव में मर जाओ, ये उससे भी बुरा है। ये कुछ भी नहीं है जो हो रहा है, इससे भी वर्स्ट हो सकता है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ये ड्रामा जो है ना बहुत अच्छा है, निर्भय भाई साहब ने एक क्लास में कहा था कि बाबा के पास बहुत सारी स्क्रिप्ट आई ड्रामा की, डायरेक्टर है ना, तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना ये उसने पसंद की, ये ठीक लग रही है उसको। इसकी जो दूसरी थी ना उसमें तो बहुत खतरनाक खतरनाक था, इसमें अभी तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना ठीक हो रहा है। अगर वो दूसरी स्क्रिप्ट ले होती तो उसमें तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रोना ही रोने का पार्ट था तुम्हारा, इसमें फिर भी ठीक है, बीच बीच में रोते हो, इंटरमिटेंट क्राइंग है, इंटरमिटेंट दुख, एकदम दुख नहीं आता है, थोड़ा सा आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर जाता है, आना जाना दुख का लगा रहता है इस ड्रामा में। ये ड्रामा अच्छा है, ये भगवान ने चूज किया हुआ स्क्रिप्ट है ये, बाकी कितने सारे थे उसमें विलन ज्यादा थे उसमें तो पता नहीं क्या क्या था, इसलिए ये ठीक चल रहा है, जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है। संडे की मुरली जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा, क्योंकि क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है इधर, नॉन सीरियस एटीट्यूड, चीजों को पकड़ के रखना है। इसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे वो कर दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, ये मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता, अच्छे से बिहेव नहीं करता है, ये मुझे सम्मान नहीं देते, ये मुझे मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात नहीं सुनते, मुझे चांस नहीं देते, अवसर नहीं देते, मेरे साथ ऐसा ही करते हमेशा, सब ये ऐसा ही करते बचपन से, इनकी छोड़ो माँ बाप भी ऐसा ही करते थे, जो भाई था ना मेरा उसको ज़्यादा, उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, मेरे तरफ हमेशा कम ध्यान। मुझे जो किताबें भी मिलती थी ना, वो बड़े भाई की जो किताबें थी ना अंडरलाइन की हुई, नई कभी नहीं मिली, वही सारी किताबें, कपड़े भी पुराने मिलते थे, जूते भी पुराने, मेरे साथ बचपन से ऐसा हो रहा है, कॉलेज में भी गया तो भी ऐसा ही हुआ। क्या 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 मनाते थे तो हमेशा ही मैं हरदम ही आ रहा तो पकड़ के रखा है, पर क्या करना है, ये सब चीजों को एंजॉय करना है, ये जो भी हो रहा है एंजॉय करना है, खेल है। हम कौन है, ऑडियंस है, एक्टर भी हम हैं ऑडियंस, पर हम ऑडियंस होना भूल जाते, एक्टर ही रह जाते, हमारे दोनों रोल है इस समय। तो सबसे पहला तो ये संसार एक ग्राउंड है जिसमें क्या हो रहा है, खेल चल रहा है, और हम क्या है, इस खेल को देख रहे हैं, तो खेल में कोई जीतता है कोई हारता है, होगा एक। दूसरा ये एक नाटक है, एक स्टेज है, स्टेज पर नाटक चल रहा है, हम दर्शक है। तो नाटक कितना भी डरावना हो, पर नाटक कोई छोड़ के जाता है क्या, नहीं, ऐसी आग करके उसमें से देखते हैं, फिर देखेंगे जरूर, फिर ऐसा करेंगे नहीं, नीचे छुप जाएंगे बच्चे, पर फिर भी ऊपर से थोड़ा सा फिर से देखेंगे, छोड़ के कोई नहीं जाता है, देखते जरूर है। और एक बार देख लिया, अगली बार दूसरी बार डरते हैं फिर नहीं डरते, तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार, जितनी बार ज्यादा देखोगे डर समाप्त। इसलिए स्टेज है, पहला ग्राउंड बताया, ग्राउंड में क्या चल रहा है, खेल चल रहा है, दूसरा स्टेज, स्टेज पर क्या हो रहा है, नाटक हो रहा है, तीसरा स्क्रीन, टीवी स्क्रीन है, कार्टून शो चल रहा है, कार्टून शो चल के कोई दुख मनाता है, मिकी माउस बेचारा यहां से गाड़ी आती है ऐसा खड़ा होता है, इधर से गाड़ी आती है उसको पूरा ही फ्लैट हो जाता है, फिर उठ के खड़ा होता है ऊपर से गिरता है ऐसा लगता है मर गया, पर फिर से खड़ा हो जाता है, कुछ होता ही नहीं, दीवार से जाता है चपक जाता है पूरा, फिर से ठीक हो जाता है। किस लिए बनाया ये कार्टून शोज, सिखाने, तो बाबा कहते ये क्या है, संसार कार्टून शो है, स्वयं पर ही हंसना बहुत बड़ी कला है, कार्टून शो की तरह सारा देखना जो कुछ हो रहा है, नॉन सीरियस एटीट्यूड। उसके बाद ये मैदान है जहां रासलीला चल रही है, क्या हो रहा है यहाँ, डांस, और डांस देखने वाले खुश होते हैं, कई बार डांस में गड़बड़ भी होती है फिर भी खुश, देखते रहना है साक्षी होकर इस डांस को, ये सारा संसार नृत्य है, एक रास चल रही है, केवल वहां रास नहीं, सृष्टि में कहीं पर भी नजर दौड़ाओ रास हो रही है, नृत्य हो रहा है, बादलों को देखो क्या कर रहे, नृत्य कर रहे। झाड़ों को देखो क्या कर रहे, नृत्य। भाषा तो वो व्यक्ति ने बहुत बाद में सीखी, पहले नृत्य था, डांस था। सतयुग में क्या था? नृत्य। जहां देखो चांद को देखो क्या कर रहा है, नृत्य। सूरज को देखो क्या कर रहा है, नृत्य। पक्षियों को देखो क्या कर रहे हैं सारे पक्षी, मोर को देखो क्या कर रहा है, उसे कोई परवाह नहीं। जंगल में मोर नाचा कोई देखे ना देखे। जो रियल डांसर होते हैं वो किसी और के लिए डांस नहीं करते, खुद की खुशी के लिए डांस करते। तो सारा संसार में नृत्य ही नृत्य हो रहा है, हर जगह पर नृत्य, कोई भी नृत्य। तो इस संसार को, और भगवान स्वयं कौन है? नटराज, द डांस मास्टर, वो सबको नचा रहा है। हम दुखी क्यों हो रहे हैं किसी के डांस को देख को? अरे किसी को डांस नहीं आता है पर फिर भी कोशिश तो कर रहा है नाचने की, तो एंजॉय करना इस नृत्य को। ये एक कॉमेडी शो चल रहा है, क्या हो रहा है यहां पर? कॉमेडी हो रही है, कॉमेडी ऑफ एरर्स। कई बार होता है ना डबल रोल, दो हीरो दो हीरोइन कितने कंफ्यूजन हो जाता है, वो इधर वो उधर, सब गड़बड़। शेक्सपियर का प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर, यहां से ही वो डबल रोल की सिस्टम निकली फिल्मों में। तो यहां पर बहुत कॉमेडी हो रही है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को डांट रहा है, वो घर जाकर उसको डांट रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना कॉलेजेस में होता है ना, पहले रैगिंग होती थी, इतना डरते थे रैगिंग से बहुत ज्यादा, जो सीनियर्स, फिर सीनियर बनने के बाद दूसरों को डराते, पहले खुद डरते फिर वही टेरर रैगर्स वो बन जाते हैं। तो ये सब कॉमेडी हो रही है यहाँ पर, ये संसार में। तो ये कॉमेडी देखकर भारीपन थोड़ी आएगा, हल्कापन आएगा। तो हल्के होने के ये तीन सूत्र है। सबसे पहला बताया, अनलोड द गन, खाली कर दो अपने आप को, पूरा खाली कर दो, कुछ भी ना बचे अंदर, सब कुछ सुना दो उसको, जितना सुनाना है वो सुनेगा। दूसरे तो किसी को सुनाओगे तो कहेगा मुझे जाना है प्लीज वो तो क्या, मैं बाद में आधा बाद में सुनूंगा भगवान को कितना भी सुना वो कभी बोर नहीं होगा। दूसरा क्या करना है, जो अतीत को पकड़ के रखा है, अतीत में जो कुछ भी हुआ या तो बाबा को समर्पित कर दो, भूल जाओ, उससे सीख लो, पाठ पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ। बीती सो बीती, बीत रात गई सो बात गई, और वो हमें अब प्रभावित ना करे। उसके लिए कब तक रोते बैठेंगे, वो बात हो गई, कोई मर गया अभी तक रो रहे उसके लिए, वो गया, उसने जन्म भी ले लिया, तुम्हारे आंसू अब उसको दुख दे रहे, तुम्हारे वाइब्रेशंस उस तक पहुंच रहे। एक पिता था, उसकी बेटी मर जाती, एकदम बहुत उसको प्यारी थी, और फिर वो रोज रोते रहता है, रोज रोते रहता है, रोज रोते रहता है। एक दिन स्वप्न में देखता है उसकी बेटी दिखती है, और वहां पर वो स्वर्ग में है, और स्वर्ग में सारे लोग खुशियां मना रहे, पर उसकी बेटी जो है बैठ के रो रही है स्वर्ग में वो पूछता है तुम रो क्यों रही हो? वो कहता है क्योंकि मेरे पिताजी ने उधर धरती पर दुखी है, इसलिए मैं यहां रोती रहती हूं। जो जिसको जाना था वो चला गया है, उसने नया जन्म भी ले लिया है, अब उसके लिए रोते रहना अर्थात तुम्हारे वाइब्रेशन हम उसको भेज रहे हैं, तुम उसको भेज रहे हो, उसको नया जीवन चालू करने दो। अब उसका पुराना जर्जर हो गया था वो शरीर, उसका नया जीवन है, नए उमंग, नए संबंध, उसको नए संबंधों में एक नया नई शुरुआत उसको करने दो। कितना थक गया था इधर, अब भी उसको अपने वाइब्रेशंस मत भेजो दुख के, स्टॉप क्राइंग। तीसरा एंजॉय द शो, क्या करना है, मजे लेना है इसके, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इसमें एंजॉय करना है। जैसे बाबा साक्षी है इसलिए वो स्थिर है, इस सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है, और ये वहां हो रहा है स्क्रीन पर, खेल है। और एक, ये सारा संसार एक स्वप्न है, क्या है ये? एक स्वप्न है, ये सब स्वप्न हो रहा है, ये सारा स्वप्न ही है। एक गुरु देखता है कि मैं रात में स्वप्न में तितली बन गया, अपने शिष्यों से कहता है इसका क्या अर्थ है? वो कहते हैं स्वप्न था, भूल जाओ उसको, अभी तक क्यों याद कर रहे हो? वो कहते प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न दूसरा है। शिष्य समझाते हैं गुरु को, आप हमको सिखाते हो ना पास्ट को भूलो भूल जाओ, जो स्वप्न था वो हटाओ उसको, वो तो कोई मिथ्या था। वो कहते प्रश्न वो नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं गुरु कहीं ये स्वप्न देख रहा हूं कि मैं तितली बन गया, या फिर मैं तितली हूं और ये स्वप्न देख रहा हूं कि मैं गुरु बन गया हूं। स्वप्न ये सत्य है या वो सत्य है, प्रश्न ये है। तो ये सारा संसार एक स्वप्न की भांति है, भूलो इसको, लाइटनेस। तो फरिश्ता अर्थात हल्का। ओम शांति।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।